हमारे बिगड़े हुए काम दे बनाया रब।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन प्रोग्राम मसाइल का हल लिए हाजिर हैं। इसमें हम कुछ मसाइल अज खुद आपसे डिस्कस करते हैं और कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनकी आप हमें कॉल्स के जरिए मालूमात फराहम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको इसका कोई हल निकाल कर दें। अल्लाह के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम से कियामत के रोज मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो शख्स होगा जिसे दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पड़े होंगे। सल्लु अला अल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कुर्बानी के मौके पर जो बातें हमें खास खास पेश नजर रखनी हैं, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ईद की नमाज पढ़ने के बाद जब आप वापस आते हैं तो एडवांस में ही मेरी दरख्वास्त है कि आप जिससे जानवर ज़बह करवाना है उससे बातचीत करके रखें। टाइमिंग को ज़रूर सामने रखिएगा क्योंकि बस अवकात टाइमिंग की वजह से आधा पौना घंटा भी अगर हम लेट होते हैं तो वो चूँकि उनके भी कमाने के और दिहाड़ी के दिन होते हैं, साल में वो भी इन दिनों का इंतजार करते हैं। इतना जानवर तो पूरे साल तो नहीं कटता, तो इन्हें आपसे फारिग होकर अगले से फारिग होकर अगले के पास जाना होता है। अब आप आधा पौना घंटा इनको इस वक्त जो टॉप बिल्कुल एक सीजन है इनका, अगर आप इनको वेटिंग मोड में ले जाएंगे इंतजार करवाएंगे तो ये हरगिज दुरुस्त नहीं होता। तो फिर ये कहीं और चले जाएंगे, फिर वहां पर ये एका छुरी फेर मतलब छुरी फेर कर जानवर जबा कर किसी बच्चे को हवाले करेंगे, फिर आपके पास आ जाएंगे, फिर आपसे फारिग हो कहीं और चले जाएंगे। तो वक्त पर शुरू करें और इनसे बात करें आप कि हम इतने बजे इंशाल्लाह आपको मतलब कि जानवर दे देंगे, इतने बजे ज़बह करना है और आपने सिर्फ आपने उस वक्त हमारा ही काम करना है। इनको भी चाहिए कि सिर्फ इन्हीं का काम कर लें, तो ये आधे घंटे में पौने घंटे में ये माहिर होते हैं। अगर माहिर हैं तो फारिग हो जाएंगे। गैर माहिर यानी जिनको मतलब इस चीज का तजर्बा नहीं है, मेहरबानी करके अपना जानवर इनके हवाले मत कीजिएगा। अच्छा, जब ये होता ही है कि जब ये जानवर ज़बह करते हैं तो एक आदत की वजह से कहूं या इल्म की कमी की वजह से कहूं, जो भी आप कहें, ये जानवर को अजियत दे रहे होते हैं। अबला गोरे सवार के अंदर बाकायदा हर जो चीज लिखा हुआ है, मेरा मशवरा है कि आप इतनी कुर्बानी कर रहे हैं, लाखों रुपए की हजार रुपए की कुर्बानी कर रहे हैं, खुदा में जानवर जबह कर रहे हैं, तो इसे पढ़ लें एक दफा कि इसके जबह करने का शरई सुन्नत मुस्तहब जो भी कहे तरीकेकार जो भी बयान किए गए वो पढ़े और फिर उसको रोक लें कि आप इतना जानवर को जबह करेंगे, इसके आगे छुरी नहीं ले जाएंगे, अंदर में नहीं ले जाएंगे, ये नहीं काटेंगे वो नहीं काटेंगे, उसको ठंडा होने का इंतजार कर। आपने पैसे दिए वो ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए उसको, उसको ठंडा होने दे जानवर को। अभी उसके अंदर वो ठंडा हुआ नहीं है और उसकी खाल उधेरना शुरू कर दें और उसको मजीद उसकी टांग तोड़ दें, ये आप सोचे तो आपको भी थोड़ी सी वो झुरझुरी सी महसूस होगी कि यार ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जब ठंडा हो जाए उसके बाद फिर आगे के मामला तक गोश्त जब आपके घर आ जाता है तो अमीर सुन्नत अपने मदनी मुजाकरों में ये हमें समझाने की कोशिश की है, तरगीब दी है, जिसे मैं सेकंड कर रहा हूँ, वो यही है कि अच्छा उम्दा जो हिस्सा है गोश्त का वो कोशिश कीजिए कि गुराबा में, बल्कि सबसे पहले अमीर सुन्नत की तरबियत और तालीम का जो हमें फायदा हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले सैयद और सादात आले रसूल को का अगर आपके जहन में कोई नाम है تو ان کا مت انتخاب کریں کہ یہ ماشاءاللہ یہ جو گوشت ہے اچھا گوشت ہے اور پھر اس میں کلیجی بھی ڈال دیں تو اس میں بکرا ہے یا چھوٹا بڑا جو بھی ہے پائے کے پیس ڈال دیں تو ایک اچھا سا پیکج بنا دیں اور ان کو سید صاحب کو بھیجیں. اسی طرح غریب مساکین رشتہ دار آس پڑوس والے اچھا بھیجیں. یہ بھی راہ خدا میں دینا ہی ہے, اللہ کی راہ میں دینا ہے. تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ میں نے خلاصہ عرض کیا ہے ترجمے کا.
ماشاءاللہ.
میری درخواست یہی ہے کہ اس طرح کا کوئی انداز اختیار کریں کہ جو بچ گیا ٹھیک ہے وہ دیا آپ نے, اللہ اس کو بھی قبول فرمائے, لیکن جتنا اچھا دیں گے عمدہ دیں گے. اچھا کئی ایسے گھر ہیں کہ جو صرف سالانہ شاید گوشت دیکھتے ہوں گے, بلکہ ایسے بھی گھر ہوں گے جو شاید اس سال بھی جو سالانہ گوشت بھی نہیں دیکھ پاتے ہوں گے, نہیں اوور لوک ہو جاتے ہوں گے, نہیں نظر میں آتے ہوں گے. ابھی وقت ہے, اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ نے اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے بغیر کوئی صورت بنائی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ غریب مساکین اور بالخصوص وہ آپ ان کو ڈھونڈیں جو واقعی گوشت نہیں کھاتے, ان کو نہیں میسر, مہنگائی آپ کے سامنے مہنگائی ہے. ایک اور ریکویسٹ یہ آپ سے کرنی تھی کہ اتنا جلدی پہنچا دیں, کوشش کیجیے.
واہ,
اس میں کوشش کی بات کر رہا ہوں.
مرحبا.
کوشش یہ اتنا جلدی پہنچا دیں کہ وہ کم از کم عید کے روز دوپہر کا کھانا گوشت کھائیں. آس پڑوس میں ادھر ادھر گوشت ہی گوشت گھوم رہا ہے, بچے بھی سوچتے ہوں گے کہ امی آج ہمارے گھر گوشت نہیں آیا, آج ہمارے گھر گوشت نہیں آیا, آج ہمارے فلاں رشتے دار نے گوشت نہیں بھیجا. کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے آپ سے, لسٹ بنا لیں, لسٹ بنا لیں اور لسٹ بنانے کے بعد آپ پہنچانا شروع کر دیں اور جلد از جلد پہنچا دیں, اچھے سے اچھا پہنچا دیں. اور تو انشاءاللہ دیکھیں یہ راہ خدا میں دینا ہے. اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم فقراء کو مساکین کو کھلاؤ تو ان کو کھلاتے وقت ان پر اپنا احسان مت جتاؤ, بلکہ ان کا اپنے پر احسان لو کہ انہوں نے تمہیں نیکی کمانے کا موقع دیا. ورنہ ہم دے گا ہم سمجھ ہم نے احسان کیا نہیں, یہ تھا ہی ان کے مقدر میں جن کو آپ نے پہنچایا.
اللہ اکبر.
آپ کا تھا ہی نہیں, اللہ نے آپ کا انتخاب فرما دیا کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کے ذریعے سے اس تک پہنچ رہا ہے, آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے. گویا کہ ایک ثواب کمانے کا بہترین ذریعہ وہ شخص بنا جس نے اسے قبول کیا, وہ کھائے گا, وہ دعائیں دے گا آپ کو, بچے دعائیں دیں گے, اس کے گھر سے آپ کو دعائیں ملیں گی. اور ان دعاؤں سے کتنے مسائل اور کتنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں, حل ہوتی ہیں, اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ میری کچھ ابتدائی درخواست تھی کہ آپ کے یہاں جو بھی عید ہے, عید کو اس انداز آپ اپنے لیے بھی رکھی رہے ہیں گوشت وغیرہ, لیکن بعض تو ایسے جو سال میں ہفتے میں دو دو دن ان کی گوشت پکتا ہے, اور گوشت روز پکنا بھی نہیں چاہیے, پھر مسائل اور بیماریوں کا بھی بعض اوقات معاملہ شروع ہو جاتے ہیں. تو سبزی ہے, مچھلی ہے, اس طرح بہت ساری چیزیں جو کھائی جاتی ہیں, گوشت کی بھی ایک بار ہی آنی چاہیے. تو یہ ایک میری درخواست تھی, اس کو اگر آپ سیریس لیں گے گھر میں ڈسکس کر لیں, ابھی آپ اب چھوٹے بڑے جو بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مرد اور عورت, ڈسکس کر لیں کہ یار ثواب کے لیے, اللہ 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 کے لیے ہم, اور اپنے بچوں سے کام کر رہا ہے. ایک آخر میں یہ بات کرتا چلو بھی یاد آئیے, اپنے بچوں سے ہو سکے تو اس معاملے میں کام کر رہے ہیں. میرا یہ جو ذہن دعوت اسلامی کے ذریعے تو خیر ذہن بنتا ہی ہے الحمدللہ, لیکن جب میں دعوت اسلامی کے سلمان بھائی دینی ماحول میں نہیں تھا, اس وقت بھی ہمارے گھر سے جو رشتہ داروں میں یا جہاں جہاں ہمارا گوشت تقسیم ہوتا, ہمارے یہاں گھر میں شروع سے جب میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا, ہماری اماں اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے,
آمین,
تو پیکٹ بنتے تھے, پیکٹ بنتے تھے, یعنی میں اس وقت ہارڈلی آئی تھنک 17-18 سال کی میری عمر ہوگی.
صحیح.
تو ہمارے پیکٹ بنتے تھے, بلکہ میں 9-10 میں تھا, 15-16 سال کی میری عمر ہوگی.
صحیح.
تو ہم یہ اولڈ سٹی ایریا میں رہتے ہیں موسالین میں, تو ہمارے یہاں گھر میں گوشت کے پیکٹ بن جاتے تھے, یعنی میں جیسے جانور کٹ گیا گوشت اوپر چڑھ گیا, بلڈنگ میں رہتے تھے تیسری منزل پر ہمارا گھر تھا, تو گوشت گھر پہ چڑھ گیا تھوڑی دیر کے اندر پیکٹ تیار ہو جاتے تھے, اس پر چھوٹی چھوٹی پرچیاں ڈلی ہوئی ہوتی تھی
سبحان اللہ,
اور مجھے وہ دے دیا جاتا تھا کہ پہنچا, تو جو بھی ہمارا جہاں جہاں پہنچانا ہوتا تھا میں وہاں پہنچا کر پھر گھر آتا تھا, پھر ہم وہاں سے گھر بیچ کر گلزار حبیب مسجد جو دعوت اسلامی کا جہاں پہ اجتماع ہوتا تھا وہاں رہنے کے لیے آ گئے, تو وہاں بھی وہی روٹین تھی, پھر ہم ایک اور جگہ رہنے چلے گئے ڈیفینس ویو کی طرف کراچی میں, وہاں بھی وہی روٹین تھی, تو یہ روٹین شروع سے یہ چونکہ ہماری اس طرح ایک ذہن بنایا گیا تھا تربیت ہوئی تھی, تو اس کے ہمیں تو سیدھی بات ہے فائدے ہوئے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن کی یہاں ویسے قربانی ہوئی ہے ٹھیک ہے, ان کے یہاں بھی اگر آپ نے رشتے داروں کو عزیزوں کو گوشت دیا ہے, انہوں نے آپ کو پیکٹ بھجوا دیا ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھا انداز ہے, اس سے بھی دل میں محبت داخل ہوتی ہے, اس نے سلوک ہے صلہ رحمی کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, لیکن میں آپ دونوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ دونوں ان کا انتخاب کریں جن کے یہاں گوشت نہیں پہنچا یا جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی, میرے یہاں قربانی ہو گئی آپ نے میرے یہاں بھجوا دیا, آپ کے یہاں قربانی میں نے آپ کے یہاں بھجوا دیا ٹھیک ہے, یہ میں کہہ رہا یہ بھی مطلب صلہ رحمی ہے, رشتہ داری ہے, آس پڑوس کے ساتھ ایک اچھا اس نے سلوک ہے, یہ اس کا یہ مطلب غلط نہیں کہہ رہا میں اس کو, یہ بھی اچھا انداز ہے, لیکن میں آپ دونوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج آپ دونوں ایک دوسرے کو آپ پورا سال ایک دوسرے کو تحفہ دیں, لیکن آج اگر عید کے دن آپ دونوں جن کے گھروں میں قربانی ہوئی ہے چلے آپ آٹھ بوٹیوں کی بجائے اس کو دو بوٹیاں بھیج دیں, بھیجیں چلے بھیجیں ٹھیک ہے اچھا ہے بھیجنا چاہیے, اس سے بھی آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں, نفرتیں کینہ بغض ہو تو وہ بھی نکل جاتا ہے, تحفہ دو محبت بڑھتی ہے حدیث پاک میں
جی,
تو لیکن اگر آپ دونوں ان کا بھی انتخاب کر لیں کہ جن کی آج قربانی نہیں ہوئی ہوگی یعنی عید کو قربانی نہیں ہوئی ہوگی, آج آپ نیت کر لیں آپ دعوت اسلامی کے ساتھ جو اجتماعی قربانی اسپیشلی جو اوورسیز کے تعلق سے ہوتی ہے, تو الحمدللہ مختلف شہروں میں مقامات پر ہماری اجتماعی قربانی کا سلسلہ رہتا ہے, اور جو پاکستان کی اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہ آئی تھنک کہ مور اور لیس شاید 700-800 یا اس سے زیادہ مقامات پر ہماری اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہے, اور ہزاروں جانور اجتماعی قربانی میں ہمارے یہاں بھی دعوت اسلامی کے تحت ذبح ہوتے ہیں, اور اوورسیز کے ملا کر ہزاروں جانور ہمارے ذبح ہوتے ہیں, اور الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ انہیں بھی ہم ان کے جو مصارف ہیں مستحقین یا جو بھی اس غریب غربا یا اس طرح جو بھی ان کی صورت ہوتی ہے, میں پرٹیکولر مجھے الفاظ یاد نہیں ہے, تو تقسیم بھی کیا جاتا ہے, لیکن بعض ہماری جو پاکستان کے اندر جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے وہ گوشت لے جاتے ہیں, بعض بڑے شہروں میں یہ ہوم ڈلیوری کے ہمارے یہاں سروسز خدمات موجود ہیں, تو دعوت اسلامی کے تحت آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رونگ شاید ہزاروں غریبوں کے مستحقین کے یا عام لوگوں کے مسلمانوں کے گھروں میں گوشت پہنچتا ہوگا, ہمارے اسلامی بھائی اس پر باقاعدہ کام کرتے ہیں, تو ایک تنظیمی طور پر یہ کام تو ہو ہی رہا ہے, لیکن آپ انفرادی طور پر بھی کریں گے تو شاید بہت سارے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا, یہ میری درخواست ہے.
مرحبا, گوشت دینے کے حوالے سے آپ نے کافی اچھی گائیڈنس دی ہے, جن کے ہاں گوشت آ رہا ہے ان کے لیے بھی کچھ گائیڈنس ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو قبول کر لیں. مسئلہ یہاں پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ گوشت آ بھی جاتا ہے, لے بھی لیا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ چار باتیں بھی جو ہے وہ کر دی جاتی ہیں, اتنا بڑا جانور کا گوشت کیا تو کم از کم کوئی گوشت تو کوئی چار پانچ ہی تو گوشت تو بھیجتے, یہ اس کو یہ ڈالنے یا یہ تو ہمارے یہاں تو چیچڑے ہی ڈال کے بھیج دیے ہیں, اچھا اچھا گوشت خود نکال کے گھر پہ رکھ لیا ہوگا, یا پھر ایک یوں بھی ایک بات آتی ہے یہ تو ہڈیاں نکل رہی ہیں اس میں سے, گوٹھی تو پتہ نہیں ہے ہی کوئی نہیں, گوٹھی ان کا تو پتہ نہیں, جانور نہیں ہڈیاں ہی انہوں نے جانا وہ قربان کی ہیں, تو اس پر بھی کچھ رہنمائی فرمائے کہ جو آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ ویلکم بھی کیا جائے, اور اس پر نیگیٹو کمنٹ پاس کر کے بدگمانی کر کے یا معذ اللہ غیبت کر کے या फिर बाद में उसको और टीज करके अपना जो है ना वो नामा अमाल भी सयाना किया जाए।
इसमें सलमान भाई ये दरखास्त है कि इसमें पहले तो भेजने वाले को ही हमें अर्ज करना चाहिए,
सही,
कि अच्छा उम्दा और सुथरा और मुनासिब भेजें, ठीक है, इतना भेजें कम से कम एक टाइम का खाना तो बच्चे घर वाले मिलकर खा लें गोश्त का, ये तो सबसे पहले उनको है। हो सकता है कि घर में किसी को कह दिया गया हो कि बेटा आप जरा भर के भेज देना, और उसने क्या भेजा वो उनको पता ही नहीं है घर वालों को, ये भी मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि जैसे बड़े घरों में खादिम है, मुलाजिम है, चौकीदार है, ड्राइवर है, ये उमूमन हो सकता है कि बाहर सारी कुर्बानियों के काम वो कर लेते हो और घर में उन्हीं को कह दिया गया हो कि ये 50-50 घर है, पहले से लिस्ट दे दी गई है, दे देना, तो हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी चीज भर दी हो जो कि आपको मुनासिब ना लगी हो जिनका पहुंचा। अब ये कि फाइनली उनके यहाँ पहुंचा ही ऐसा था कि जिसमें वो जो कह रहे वही दुरुस्त है कि प्रॉपरली वो गोश्त पहुंचा ही नहीं है, हड्डियां पहुंची हैं और इतना मतलब कि वो फरहत बख्श मामला नहीं है, तो ठीक है तोहफा तो है ना, सब्र करें, अल्लाह ताला खैर फरमाए, गीबत करके और इस तरह के कमजोर बातें करके अपने नामा अमाल को वाकई खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है, मिला है अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसका भी शुक्रिया अदा करे, उसको उसके हिसाब से सवाब मिलेगा, आपको आपके हिसाब से सवाब कमाइए।
मरहबा माशाल्लाह, वरना सब हकीकत बात यह है कि जो हड्डियां होती है ना जी, बिलखसूस जो जॉइंट की हड्डी होती है वो अगर सही तरीके से जहाँ वो कटी हुई हो और उसकी बंदा यखनी निकाल के उसकी पी ले ना जी, तो
अब वो दिन यखनी का नहीं है ना यार,
नहीं मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ,
यखनी ना बिला, और आप इतने हड्डियों का फसल बहना है और आपके घर पे हड्डियों का ही रस लग गया है।
नहीं, हमें तो जौक है, हड्डी जो जॉइंट की हड्डी होती है ये प्रॉपर तरीके से जहाँ वो कटी हुई हो, इसकी यखनी, इसका पुलाव कभी इंशाल्लाह सिलसिलेकार करेंगे,
ये तो क्या नसीब की बात है हमारी।
हाँ जी, फिर लगेगा पता जी, तो अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए। आगे चलते हैं, नाज़रीन की कॉल्स भी जो है वो हम लेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। जानवरों के हवाले से मैं चाह रहा हूँ एक बात, आप इसको भी ले लें कि बाद वक्त ऐसा होता है कि जानवर तो महंगा हमने खरीद लिया है लेकिन उस जानवर के लिए कोई ऐसी मिट्टी डालकर कोई कुछ जगह मुनासिब सी बना दी जाए कि उस पर वो बैठ जाए, इसका इस्तेमाल नजर नहीं आता। यानी मैंने ये नोट की है, जाते हुए आते हुए गलियों में देखा भी है, जानवर है, अच्छा जानवर है, खूबसूरत जानवर है, लेकिन उसके लिए कोई वो उसने वो बैठना तो रोड के ऊपर ही वो बैठेगा और रोड की क्या सूरत हाल होती है, कंकर पत्थर क्या मामला होता है भी आप जानते ही हैं, तो कुछ थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया जाए कि उसके लिए एक मिट्टी की भी सूरत हाल बनाई जाए ताकि उसको बैठने में राहत हो। आपका राती पॉइंट ऑफ व्यू वैसे क्या है?
मैं अवर्ष करता हूँ
जी,
असल में सलमान भाई हम है शहरी लोग, जानवरों के ताल्लुक से हमारे हमारे एक्सपर्टीज नहीं है कोई,
सही।
अब हमें पूछे कि कार कहाँ पार्क करनी है, मोटरसाइकिल कैसे पार्क करनी है, हमें और 10 किस्म के आप चीजें पूछ लें जो शायद गांव देहात वाले इसको इतना ना जानते हो, उसकी शहरी लोगों के पास एक्सपर्टीज है। अब चूंकि जानवर शहरों में पाला ही नहीं जाता
जी।
अच्छा अभी भी लेंगे तो 2-4 दिन के लिए लेंगे,
सही।
बहुत ज्यादा 7-8 दिन के लिए ले लेंगे, तो हमारी शुरू से इस तरह की कोई तरबियत है ही कोई नहीं। अगर आप गली कुचों में ये मिट्टियां डालेंगे, ट्रके डालेंगे, इस तरह बिल्कुल जो आपने कहा है जानवर का जो एक उठने बैठने का और उसके रहने का जो एक मुनासिब सा इंतजाम है, आपने उसी की तर्जुमानी की है और यही आइडियल है, लेकिन आप हमसे इतना नहीं कर सकते, वो तवक्को नहीं रख सकते क्योंकि हम शहरों में रहने वाले लोगों के पास इतनी मतलब इसकी एक्सपर्टीज नहीं है, हम जानते ही नहीं इन तमाम दर चीजों को, और हमें 2-4 दिन के लिए जानवर लेना होता है गलियों में, फिर वो मिट्टी के ट्रक हम उतारते नहीं है। बाज लो चुप, मतलब कि हजारों बंगले हैं जिन्होंने अपने घरों में, तो वो अंदर बंगलों में पहले मिट्टी फेंकेगा उसके बाद वहां जानवर फेंकेगा, तो वो उतना वो एफोर्ड नहीं करेगा, उसको उसकी सोच भी नहीं है, और बदकिस्मती के साथ इतने स्लिप और टाइल्स वाले फ्लोर पर बड़ा बहुत जानदार शानदार जानवर खड़ा कर दिया जाता है जो रियली आप सही कह रहे हैं तो उसका खड़ा होना मुश्किल है, उसके वो जो खुर जो होते हैं वो स्लिप हो रहे होते हैं, पांव स्लिप हो रहे होते हैं, तो उसके लिए उठने बैठने में वाकई आजमाइश है। लेकिन अब चूंकि हमारी अब हम आज बात करेंगे, वरना अगर हम महीना 1.5 महीना पहले कहना शुरू कर देते कि काइंडली चलो मिट्टी ना सही, कोई और इंतजाम कर लें कि उसका पांव सलीब ना हो। इसमें यही भी अच्छा है कि वो चूंकि नजासत भी करता है जानवर, तो वो मतलब ऊँ करके बुलाएगा तो नहीं, बोले जी क्या काम है, तो बोले टॉयलेट जाना है। उसका तो सारा निजाम हिसाब किताब वही है, तो उसका तो मतलब कि वो बैग बैग भी नहीं लगा हुआ है, जो है डायरेक्ट है। तो उसमें अगर ये सारा इत्तेमाम किया हुआ हो तो आप बहुत सारे जरासीम और नजासतों से भी और उसके मसाइल से भी बच सकते हैं।
जी अल्लाह रहम करे, आपके द्वारा मामला फरमाए। आइए कॉल शामिल करते हैं। जी
मोहम्मद अफजान अत्तारी, माशाल्लाह से मसाइल का हल बहुत ही प्यारा चल रहा है। आपसे अर्ज है कि मेरी अम्मी के पांव में बहुत ज्यादा दर्द है, जिससे चलने में भी बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है। आप इस बारे में कोई घरेलू इलाज भी बता दे। और डॉक्टर सलमान, आपसे अर्ज है कि इस बारे में कोई मजीद मशवरा आपके सहन में है, तो दर्द किस तरह ठीक होगा इस बारे में कोई रहनुमाई फरमा दे।
जी डॉक्टर सलमान, ये जो कंप्लेन कर रहे हैं एक पांव के अंदर इनके जो दर्द आ रहा है, तो सबसे पहले तो इनका एक एज फैक्टर की मालूमात नहीं है। उसमें मुमकिन है सूरत के अंदर वजन जब ज्यादा होता है तो वो स्ट्रेस एक पांव पे आ रहा होता है। दूसरा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड अपना लेवल चेक करवा लें। यूरिक एसिड मुमकिन है सूरत में अगर बढ़ा हुआ हुआ तो उसके अंदर ये पेन आ रहा होगा। और इनका जो वॉक चलने का जो पैटर्न है उसको भी जरा देख लें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि दोनों में किसी एक टांग पे बंदा वजन दे रहा होता है, जब वजन दे रहा होता है तो उसमें वीकनेस आना शुरू हो जाती है थोड़ी। तो उसका पांव का जिस लोकेशन पे दर्द है वहाँ मसाज फ्रिक्वेंटली करते रहें और यूरिक एसिड अपना मॉनिटर करवा लें।
सही
खलील
जी, कॉल अच्छा बता रहे जी।
तो रूहानी इलाज भी करें, अल्लाह करीम शिफा अता फरमाए,
आमीन।
चलते फिरते उठते बैठते जब जब भी मौका मिले तो या गनी यू, या गनी यू, या गनी यू पढ़ते रहें। अव्वल आखिर जब पढ़ें तो तीन तीन मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ लें, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा हासिल होगा। पैर में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, जिस्म में कहीं भी दर्द हो, सभी के लिए ये पढ़ा जा सकता है। घरेलू इलाज के हवाले से ये है कि इसमें यही देखना होगा कि वजह क्या है। आमतौर से अगर जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से ऐसा है तो अंजीर का इस्तेमाल इसमें मुफीद रहेगा कि आसाब और पट्ठों के लिए ये मुफीद है। इसी तरह से अखरोट, थोड़े से अखरोट और थोड़े से पिस्ते, ये सुबह अगर खाली पेट इस्तेमाल कर लिए जाए तो इससे भी जो है आसाब और पट्ठों में जो कमजोरी होती है वो दूर होती है। या खजूरों का इस्तेमाल कर लिया जाए तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह।
उससे कितने अंजीर खाए जाएं जिससे आपको लगता है कि आसाब पट्ठे वगैरह जो कमजोर हो जाते हैं वो मतलब मजबूत हो जाए, मतलब ये किफायत, और कितने दिनों में किसी को हम कहें वो तीन दिन अंजीर खाए वो वहीं के वहीं खड़ा है, बोला ना आसाब का कुछ हुआ ना पट्ठों का कुछ हुआ, पैसे चले गए। तो एक कितने दाने खाएं कि एक नॉर्मली आपको मेंटली तो आपको फील होगा। जैसे हम ये मेडिसिन लेते हैं, कोई भी हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो दो चार घंटे के बाद एक फील होता है कि यार ये पसीना आ रहा है और एक बदन में चीज हो रही है। तो इस तरह की अगर कोई आपके पास ऐसी है कि भाई इतने दिनों के बाद ही अपना वो भी रेगुलर लें, इतने लें तो एक आपको फील करवाएगी ये चीज।
7 अदद अंजीर अगर इस्तेमाल की जाए रोजाना किसी भी एक वक्त में इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये कमर के दर्द हो या जिस्म में कहीं भी दर्द होते हैं, हाथ पैरों के जो दर्द होते हैं, इस हवाले से मुफीद रहता है और इसके फायदे इंशाअल्लाह नजर आते हैं। अगर बिलफर्ज कब्ज वगैरह भी है तो यही 5-7 अंजीर जो है ये रात को दूध के अंदर इसको पका लिया जाए और फिर इसको दूध भी कुछ देर पकाने के बाद जब दूध का रंग ब्राउन सा हो जाए तो फिर अंजीर को भी खा लिया जाए और साथ में दूध को भी पी लिया जाए। अगर आपके साथ कोई गैस कब्ज वगैरह के गैस वगैरह का भी मामला है, जिसम यानी पेट ठीक नहीं रहता, हाजमे के भी मामला हैं, तो फिर इसकी तरतीब यूँ कर लें कि खाने के बाद इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, जैसे 2-3 दाने सुबह, 2-3 दाने दोपहर को और 2-3 दाने शाम में। तो 2-2 से शुरू करें, जैसे जैसे ये तबीयत को मुवाफिक आता जाए तो फिर 3-3 भी ले सकते हैं।
यानी मजमू तौर पर अगर 5-7 इंजीर अगर रोज के खा ले तो आपको लगता है कि महीने भर में उसको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। 15-20 दिन की बात ना करें, नहीं
जी जी,
एक महीने का तो कम अज कम पीरियड दें। तो एक महीने का नुस्खा है, टेस्टी होती है और अच्छी होती है।
जिनरिक फल कहा गया इसको?
जी
जन्नती फल कहा गया।
हमारे यहाँ तो ये वो खुश्क है, मतलब सुखड़ी हुई है, वरना वो बाहर तो बाकायदा वो जैसे के नाशपत्ती टाइप के जैसे होता है ना, ऐसे पूरे पूरे ये तो सुखड़ गए ना।
यहाँ पर मिलते हैं जी वो?
हाँ।
सर अंजीर,
अल्लाह ने ये बड़ी नेमत दी है, बहुत बड़ी नेमत है इंजीर। लेकिन जाहिर है कि हर कोई शायद इंजीर की जो कॉस्ट है वो पेमेंट ना कर सके, थोड़ा सा महंगा सा है।
आजकल ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखा तकरीबन 400 रुपए 350 रुपए का पाव है, 1600 रुपए किलो, 1500 रुपए किलो है, तो होता तो थोड़ा महंगा ही है।
महंगा, थोड़ा सा महंगा महंगा, आम आदमी इतना जल्दी वो एफोर्ड नहीं कर सकता।
अल्लाह शिफा,
अल्लाह ताला सबको शिफा दे, लेकिन एक अल्लाह ताला की नेमत है। इसे मैं तो अगर खलील भाई इजाजत दे तो मैं तो आम लोग जो बिल्कुल नॉर्मल हैं आप, मैं तो आपको भी यही मशवरा दूंगा कि इंजीर का इस्तेमाल, अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है भले आप तबीब या डॉक्टर से जो भी आप मशवरा करना है करें, लेकिन 5-7 इंजीर रोजाना अपने उसमें मामूल में रख लें। आपके आपको कोई इशू नहीं है, इसको कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, एहतियात जो है ना वो इलाज से बेहतर है। और ये इसको पूरा एक ये इसको पूरी बुक्स आपको मिलेंगी, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इसको पूरे पूरे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। बहुत ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो ये अगर आप लेना शुरू कर दें तो जैसे मल्टी विटामिन पहले से दी जाती है, अब क्या मेडिसिन मेडिकल स्टोर से मल्टी विटामिन ले लेंगे और ऐसे, तो उनके कुछ ना कुछ आगे पीछे के साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर की तरफ से और आपको आपके तबीब की तरफ से फ्री हैंड है और शुगर वगैरह के भी इश्यूज चेक करेंगे शायद डॉक्टर आपके, तो अगर आपको इजाजत मिलती है तो मेरा मशवरा तो यही है और इसकी ताईद अगर ये खलील भाई करते हैं कि 5-7 इंजीर आप अपने रोज की रूटीन में रखें, अल्लाह ने अगर आपको गुस्सा दिए कर सकते हैं। और ये दूध वाला भी जो है कि दूध में पकाकर दूध उबल जाए पका लें, इंजीर के साथ दूध को पकाएं और फिर भले थोड़ा ठंडा होने दें, फिर ये जो भी 3-5-7 हो सके तो ताक अदद में ले लें, इंजीर भी खा लें और दूध भी पी लें, तो अगर आपको ये चीज़ें माफिक आ जाती हैं और डॉक्टर भी अगर आपको मतलब ये कहते हैं कि ठीक है तो मुमकिन है कि शायद आपको ये बहुत ही मल्टी विटामिन बहुत सारी एनर्जी इसके जरिए आपको मिलना शुरू हो जाए। और इसी दौरान ये जो आम वगैरह का सीजन है वो ये चलता है और इसके साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये अल्लाह ने बड़ी गिजाएं दी हैं, बड़ी नेमतें दी हैं ड्राई फ्रूट के नाम पर, फ्रूट के नाम पर, सब्जियों के नाम पर। हम बेसिकली हमने इन चीज़ों को इग्नोर कर लिया है और इसके इग्नोरेंस की वजह से फिर हम मेडिसिन पर चले गए। अगर हम इस पर रहते तो शायद हमें मेडिसिन की तरफ कम से कम जाना पड़ता। तो जो मैंने अर्ज किया है अगर इसकी तस्दीक तरदीद प्लस माइनस जो भी करना हो, माहिर तो आप ही हैं, मैं तो नहीं हूँ।
बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसके बड़े फायदे हैं। आम हालात में जैसे बच्चे से लेके बड़ी उम्र के अफराद तक सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि ये पेट को साफ करता है,
ब्लड के लिए भी बहुत मुफीद है।
जिनके जिनके जो खून की कमी है तो वो भी अगर उसको इस्तेमाल करें तो उसका अंदाजा एक ये भी है कि खून की अगर कमी है किसी को तो 2 अंजीर ली जाए, 2 खुबानी और काले किशमिश होते हैं 10-12 वो किशमिश, तो ये तीनों चीजों को रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसका पानी भी पी लिया जाए, ये चीजें भी खा ली जाए, 1 महीने बाद अपना टेस्ट करवा लें, अल्लाह ने चाहा तो खून के अंदर वाजे फर्क महसूस हो।
ये जो मेडिकल क्या कह रही है
400 रुपए पाव की इवैल्यूएशन जैसे कर रहे हैं ना, तो 400 रुपए पाव में कम उबिश कितने दाने होंगे, 20-25 दाने तो होंगे ना, तो दिन के 3 दाने खाने हैं तो मेरे ख्याल से ये कॉस्ट पड़ेगी हमें 10-15 रुपए डेली के, तो 10-15 रुपए सेहत पे इस्तेमाल करना इतना ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली जो
मेडिसिन पर खर्च,
मेडिसिन के ऊपर खर्च होता है। अगर यही इंजीर अगर इस्तेमाल अर्ली एज में शुरू हो जाए तो जो आने वाली एज की जो कॉम्प्लिकेशन है बिलखसूस फीमेल के अंदर, तो वो बहुत सारी प्रिवेंटिव मेजर्स इसके अंदर मौजूद हैं, जो आयरन की तवज्जो इन्होंने दिलाई है, आयरन की, कब्ज की, फाइल्स की, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एज से रिलेटेड हैं, ये चीज़ें शुरू से डाइट के अंदर शामिल होंगी तो ये बहुत सारी बीमारियां होती ही नहीं है और आपको पता भी नहीं लग रही होती है।
लंग्स के लिए फेफड़ों के हवाले से ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, बलगम को खारिज करता है और यहाँ तक लिखा हुआ है किताबों में कि अगर किसी के गुर्दे भी फेल हो जाए, अगर वो भी तबीब के मशवरे से अगर इसको मुस्तकिल एक अरसे तक इस्तेमाल करें तो वो गुर्दे भी उसके बहाल हो जाए।
और मेरे सुनत अपने रिसाले में उसके जो नए फायदे लिखे थे इंजीर के,
मदनी फूल कमो में 21 मुझे याद आ
रहा
है, 21 से कई शाखे निकलती हैं,
किस से कई शाखे, एक उस एक केक के अंदर कितने चीजें थी
जी।
तो उसके बाद तो अच्छा, मैं अगर कॉल्स भी लेनी है, लेकिन एक टॉपिक है जो अभी मेरे जहन में था, पहले था लेकिन निकल गया था, दोबारा जहन में आ गया। डॉक्टर कामरान, मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कस करूंगा, आप सब इसमें हिस्सा मिलाएं, क्योंकि ये डिस्कस उमूमन होनी है ईद के रोज, और ये जब होनी है ना, तब तो वो कहते अब तो जो होना था हो गया। गोश्त आने वाला है घरों में, ठीक ठाक गोश्त आने वाला है, जिनके आने वाला है, जिनके नहीं आने वाला और नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद है जिनका ठीक ठाक गोश्त आने वाला है। और इस वक्त आज का पता नहीं, लेकिन माजी का मुझे पता है, पिछला के हमारे यहाँ कराची में सदर में और इधर उधर जो डीप फ्रीजर बिकते थे, तो जैसे इस वक्त
सेल डबल हो जाती है,
सेल डबल बाहर फुटपाथ और रोडों पर डीप फ्रीजर रखे होते थे, जैसे कि जानवर बिकता है ना, इसे डीप फ्रीजर के भी से वो निकलती है, वो उससे लोग फ्रीज और डीप फ्रीजर खरीदते हैं, वो याद करते हैं कि कम है कम है कम है, डीप फ्रीजर कम है, आस पड़ोस मतलब खारी किए जाएंगे फ्रिज, यार गोश्त कहाँ रखेंगे, क्या क्या एहतियातें करनी है, ये मतलब ये कि हमारी हम गोश्त भी खा सकें, सेहतमंद भी रह सकें, और फवाइद ले ना कि हमें नुकसान पहुंचे, और हम आप की जो कम्युनिटी है डॉक्टर हजरात, इनकी हम कम से कम ज्यारत करें इलाज के नाम पर, बाकी तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे।
इसमें हाजी साहब, जैसे शुरू में आपने मदनी फूल दिए थे, अगर खाली उस पर ही अमल कर लें कि हम जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कुर्बानी की, जो असल रूह है कि हम इसहार करें ज्यादा से ज्यादा, ना कि हम अपने लिए जमा करके रखें, तो उससे ही आप काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। अपने हिस्से का इतना रखेंगे जितना आप इस्तेमाल करने के काबिल हो, कि आपने विद इन अ वीक या
काबिलियत बढ़ा रहे हैं अपनी, आपको शायद इल नहीं है,
बहुत ज्यादा बढ़ा लिया,
हम काबिलियत बढ़ा रहे हैं, हम डीप फ्रीजर बढ़ा रहे हैं, हम अपने अंदर हौसला बढ़ा रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, चार रिश्तेदारों के साथ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं,
इसके
साथ बढ़ा रहे हैं हमारे,
इसके साथ साथ फिर ये भी बढ़ा लेना चाहिए ना कि फिर डॉक्टर के साथ भी बढ़ा जाएगा इसके साथ, तो अगर उससे बचना है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक नेचुरल डाइट है गोश्त, कोई इसमें बईद नहीं है कि हमारे जिस्म के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक सब्जी और फ्रूट की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन बहरहाल हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप उसको एक नॉर्मल मिकदार में लेंगे और सही फ्रेश मिकदार में लेंगे, तब तो वो आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसको महीना दो महीना बाद औकात, तो ये भी देखा गया है कि साल साल पड़ा रहता है उनके पास, कि उसको फिर एंड ऑफ द मंथ में, वो जैसे वो क्लियरेंस सेल चल रही होती है एंड ऑफ द मंथ के अंदर, उसको क्लियर किया जाता है कि जी अब नया सेशन आ रहा है, हमने इसको दोबारा
अब हो जाता है सलमान,
बिल्कुल
इन माने बाजों के घरों में जैसे फ्रिज खराब हो गया, बंद हो गया, कूलिंग कम हो गई, या उनको रखने की तमीज नहीं थी और ऐसा रखा कि वो वहां ठंड नहीं पहुंच रही, थोड़े दिनों के बाद गोश्त खराब हो जाता है, जिसको हम अपने नाराज हो गया।
साहब ने भी तवज्जो दिलाई ना, तो साहब ये अमूमन जो हमारे जैसे एरिया में जहाँ लाइट जाती रहती है, तो टेम्परेचर में जैसे डीप फ्रीजर के अंदर भी टेम्परेचर में वेरिएशन आती रहती है, हर वक्त वो उसी टेम्परेचर पे नहीं रह रहा होता गोश्त, तो गोश्त अपनी लाइफ खराब कर रहा होता है जितनी देर तक आप रख रहे होते हैं। इसी तरह जब आप शुरू में जो आपने तवज्जो दिलाई कि गोश्त जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि है अभी गर्मियों का मौसम, तो लोग जो गोश्त आप बांट रहे होते हैं वो अमूमी तौर पर जो गाड़ियों में बांट रहे होते हैं वो गाड़ी के ट्रंक के अंदर रखते हैं, तो उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। मीन वाइल जब तक गोश्त उस बंदे तक डिलीवर हो रहा होता है तो वो हाई टेम्परेचर पे होता है, अक्सर गोश्त खराब होने के करीब करीब पहुंच चुका होता है, और कुछ कंप्लेन ऐसी भी हैं कि वो सही गोश्त डिलीवर तो उन्होंने किया सही, लेकिन चूंकि इतना कंटामिनेटेड होता है, कंटामिनेटेड से मुराद ये है कि जिस जगह कटा वहां सफाई का इंतजाम मौजूद नहीं, एक फिर जिस तरह पैक हुआ वो सफाई का इंतजाम नहीं,
नॉट गुड फॉर हेल्थ,
फिर वहाँ इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर वहाँ वहाँ डिलीवर हुआ, अब जो रिसीव कर रहा है उसको पहले गोश्त को पूरी तरीके से साफ सुथरा करके धो के इस्तेमाल करके ही उसको फ्रीज करना होगा, तब जाके वो काबिल इस्तेमाल होगा। ये टेम्परेचर की वेरिएशन जो है ना, ये गोश्त को डिस्टर्ब कर देती है खराबी की तरफ, और उसके वो उसमें और जिस वक्त ये कट रहा होता है, जिस जगह पे कट रहा होता है, तो वो लोकेशन हम सबको आपके इल्म में है, तो वहाँ कितनी सफाई होगी। कंटामिनेशन का मतलब ये है कि कितने जरासीम का हो सकता है उसमें एडअप, और फिर उसके बाद ये डिलीवरी कोरोना SOPs, तो हर चीज को देखते हुए सफाई सुथराई के साथ।
इसमें जैसे ये बताइए कि डिलीवरी के हिसाब से कि हमने जो बांटना है, आपने फरमाया जैसे कि बहुत सारे लोग जो स्टोर कर लेते हैं और एक लंबे पीरियड के लिए स्टोर कर लेते हैं, अब इसमें अपने लिए खुद नुकसान पैदा करने वाली सूरत हाल पैदा होती है कि बाज़ औक़ात अगर आप वो स्टोर किया हुआ यूज़ कर रहे होते हैं जो एक तरह से अपनी एक पोटेंसी उसकी जो होती है वो खत्म हो जाती
है। निज़ाम ने बहुत पहले एक बताया था हमें अपने लाइव हमारे प्रोग्राम में कि 10 दिन से ज्यादा आप गोश्त को यूटिलाइज ना करें, 10 दिन के अंदर अंदर इसको आप मतलब के खा लें या खत्म कर दें, मतलब जो भी है इसको आप खाली कर दें।
उसकी इफादियत का बहरहाल एक टाइम पीरियड होता है, अगर उसको आप यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब उस टाइम पीरियड के बाद आपको फिर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, अगर आपने वो इस्तेमाल किया तो हो सकता है आपको फूड पॉइजनिंग के भी चांसेस हो सकते हैं।
फूड पॉइजनिंग तो बहुत आते हैं,
बहुत कॉमनली हो जाते हैं आपको, गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि दस्त या पेचिश वगैरह की शिकायत हो सकती है, उल्टियों की शिकायत भी हो सकती है, और फिर ये है कि बाज़ औक़ात मैदे में तकलीफ की शिकायत हो सकती है, और खुदा ना खास्ता कोई कार्डिक पेशेंट होता है या कार्डिक पेशेंट होता है या फिर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है, अगर वो भी इस्तेमाल कर रहा है ओवर ईटिंग की वजह से उनके लिए भी प्रॉब्लम, डायबिटिक पेशेंट होता है उनके लिए भी प्रॉब्लम। तो ओवरऑल रखा हुआ फ्रिज का रखा हुआ लंबे अरसे तक रखा हुआ जो गोश्त वगैरह अगर उसका इस्तेमाल हो, चाहे वो कुर्बानी का हो, चाहे वैसे ही लोग स्टोर करके रखते हैं, बकरा बकरा कटवा के रख लेते हैं 1 महीने के लिए और फिर 1 महीने के बाद दोबारा वो सीजन के दोबारा जाके बार बार खरीदना ना पड़े, तो वो उनके लिए भी ये नुकसानदेह होता है कि उनको ये बार बार चीजों को फेस करना पड़ता है। तो अगर ऐसी चीजें करनी है तो बेहतर तरीका तो यही है कि जो एक अच्छे तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ इतना रखें कि हफ्ता 10 दिन अगर आपने बहुत ज्यादा ही उसका इस्तेमाल करना है तो हफ्ता 10 दिन के लिए यूज के लिए आप उसको यूज रखते हैं।
वो इस्तेमाल ना सब एज के साथ कर लें, कि हर एक को पता होता है अपने आप को, कोई अगर डायबिटिक पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, तो उसको अभी हाजिर वक्त में अपनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन पता है, तो वो अपनी कंडीशन को देखते हुए गोश्त का इस्तेमाल उसी हिसाब से करे, और बच्चे हैं उनके लिए हाँ गोश्त का इस्तेमाल आप रख सकते हैं, लेकिन जो कार्डियक पेशेंट हैं और डायबिटिक हैं, कोलेस्ट्रॉल इनका डिसबैलेंस है, यूरिक एसिड जिनका डिसबैलेंस है वो भी हाई हो जाता है, तो ये सारी बीमारियां हैं जिनको हैं इनके ही एग्रेवेट हो जाएंगे।
अली भाई आप कुछ फरमाएंगे?
सब इसमें ऐसा है कि जब गोश्त तो खैर इस्तेमाल करते ही हैं लोग, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कम से कम मकदार में की जाए, और फिर जो डॉक्टर साहब ने एक फहरिस्त बताई कि कोलेस्ट्रॉल वाले, यूरिक एसिड वाले, जोड़ों के दर्द वाले, या फिर जिनको खारिश होती है, तो वो कोशिश करें, इंतखाब करें कि बड़े का गोश्त जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, और छोटे जैसे बकरे का है दीगर जो होते हैं तो उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह।
क्योंकि बकरे के गोश्त में बड़े के मुकाबले में यूरिक एसिड ज्यादा है ना?
नहीं, इसकी मालूमात है, एक ही इक्विवेलेंट है।
अच्छा बराबर है, सॉरी रेड मीट की तरह। सॉरी,
जोड़ों के दर्द वगैरह और खारिश वगैरह वालों के लिए तो ये छोटे का गोश्त चल जाता है, तो यूरिक एसिड वाले तो उससे भी परहेज करें जो आपने तवज्जो दिलाई इस हवाले से, तो इस तरह की तकसीम भी कर लें, और फिर साथ साथ इसके साथ जो है वो हो सके तो सब्जी का इस्तेमाल भी किया जाए, सलाद है खाने से पहले थोड़ा सा उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाए, ताकि इसकी जो तदाबियत है इसके अंदर
मिकदार कम जाएगी,
मिकदार कम जाएगी।
ये अच्छा मशवरा दिया आपने कि अब दो या तीन मतलब 3-4 दिनों तक तो हफ्ता तो समझे हफ्ता गोश्त है ये, वो बिल्कुल एक मतलब कि वो गोश्त ही गोश्त होगा, तो अगर हर दफा जब भी आप गोश्त पका रहे हैं अगर उससे पहले एक अच्छा खासा एक सब्जी का एक सैलेड का बॉल आपके पास हो और उसको पहले आप अपने पेट में जगह दे दें चबाते हुए, हो सकता है कि उसके बाद जब गोश्त अंदर जाए तो एक तो उसकी मिकदार कम जाएगी और शायद सब्जी उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको बचा सकती है।
जी जी, मरहबा। इसमें फिर ये भी है कि बाद एक तादाद है जिनको अल्सर होता है या फिर पेट तो बहुत सारों का ही खराब रहता है कि खाया थोड़ा, बहुत सारे मामला पेट के होते हैं, बदहजमी, सीने की जलन, खट्टी डकारें वगैरह, तो ये अगर इस तरह सलाद वगैरह का इस्तेमाल होगा तो इसमें भी कमी आ जाएगी, और फिर कोशिश करें कि तेज मिर्च मसाले इसमें ना डाले जाए, तेज मिर्च मसाले भी फिर इस तरह के नुकसान पैदा
करते हैं। भैया फिर क्या उबलावा खाएं?
एक लिमिट में डाले जाए।
अच्छा,
मसाले
ना डाले,
तेज ना डाले।
अच्छा, तेज ना डाले,
सफेद। अल्लाह माफ करे, एक मैंने वो कलेजी का एक टुकड़ा खा लिया ऐसा?
नहीं यार ऐसा नहीं करना, आपको करना नहीं था ऐसा।
अच्छा बस खा लिए जी। अब तो वो जिधर जिधर अंदर जा रहा ना तो वो इतनी मिर्चियां थी कि मैंने तो तौबा तौबा मतलब जिसे बोले ना ये कर लिया वो खा के। तो इस तरह का जाहिर सी बात है खाना वो हो जिससे एक बंदे को फरहत फील हो, एक टेस्ट हो।
आपको तेज लगा ना, कई बिरादरी ऐसी हैं जो वही मिर्चे ही उनके लिए नॉर्मल होती हैं।
क्या बात
है,
अगर नॉर्मल है उनके लिए तो फिर सही है, गुड है।
मुझे इसका पता है, मतलब मैं फर्जी बात नहीं कर रहा। ऐसे कई बिरादरियां या ऐसे कई आपको खानदान मिलेंगे जिनकी मिर्च आप खा भी नहीं सकेंगे, मगर उनके लिए वो नॉर्मल है, हमारे लिए वो तेज है। जैसे हमारे लिए जो नॉर्मल है वो चाइनीज के लिए तेज है, अरबियों के लिए तेज है या नहीं है, जैपनीज के लिए तेज है, वो तेज क्या हो तो तेज तरीन है। तो जिस तरह ये एक मतलब नेशन वाइज वेरी कर रहा है, इसे कम्युनिटी वाइज भी ये चीजें वेरी कर रही है। तो हम आप इंशाल्लाह एहतियात करेंगे आइंदा, आप हमें बता दिया करेंगे आप कब तशरीफ लाएंगे, तो हम इंशाल्लाह मिर्ची के ताल्लुक से एहतियात बात भी ऐसी करेंगे जो आपको ठीक लगे
इंशाल्लाह।
इसमें
टेंशन ना ले आप, दिन आने वाले।
सफेद जीरा है, नींबू है, इसी तरह से खुश्क धनिया है, इसका इस्तेमाल मसालों के अंदर खासतौर से किया जाए और इसी तरह से रायते का भी इस्तेमाल किया जाए। मिसाल एक पाव आपने दही ली, इसके अंदर तकरीबन एक गड्डी यानी 20-25 ग्राम पुदीना आप शामिल कर लें, साथ में जो है 2-3 चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल लें, इसको ग्राइंड कर लें और फिर जो खाने के साथ इसका इस्तेमाल भी रखें, तो इससे जो है वो तेजाबियत भी जो मसाले ज़ाहिर बात है कहीं
दही रायता इस्तेमाल रखें
जी, मेहमान कहीं बनता है तो वहाँ पर के जैसा होगा वैसे खाना पड़ता है, तो कम अज कम अगर घर के अंदर अपने रायते
हम रायता लेते हैं टेस्ट के लिए ना कि बचत के लिए, हम थोड़ा सा रायते का तड़का मारते हैं कि थोड़ा टेस्ट बनेगा ना
इस तरह
जी। सलमान बारबेक्यू आए
अमीर सुन्नत की, हाँ जब वो दावत होती है पहले दिन जो होता है सिलसिले का
यही है, बेफिक्र है
सुभान
इंशाल्लाह हम यहीं से करेंगे और खाना भी यहीं आएगा पक्का।
मदीना मदीना मरहबा,
टेंशन ना ले रौनक आ रही चेहरे पर इंशाल्लाह।
और इसका
सखी का खाना
मेरे लिए सुन्नत
बीमारी नहीं करता
जी,
सखी का खाना वैसे भी बीमारी नहीं करता।
अमीर सुन्नत का तो ये मामला होता है कि आपकी एक रूटीन कहें या ना कहें चले, ईद वैसे तो आप वेट करते रहते हैं अपना, लेकिन जब ईद आएगी ना आप अपना वेट कर लेंगे और आपका टारगेट होगा कि 3 दिन में मैंने अपना वजन घटाना है। यानी आप बकरा ईद के इन 3 दिनों में अपने वेट को रिड्यूस करने पर मुजाहिदा करते हैं।
अल्लाह हू अकबर।
इसके फवायदे हैं कि बहुत ही बंदा एहतियात के साथ डर डर कर पेट में वो चीजें डालते हैं और रेली 1-2 किलो वजन अमीर से अपना नीचे लाने में माजी में तो कामयाब होते रहे।
आखिर मैं सब ये भी अर्ज कर देता हूँ कि फूड पॉइजन जैसे हो ही जाता है, पेट खराब हो जाता है, तो इसके लिए एक सुफूफ अर्ज कर देता हूँ घर में ही बना लें।
आप भी इतना रोका हमने उसके बाद चलो भाई मानोगे तो नहीं ले लो भैया ये भी रख लो, ये रायता लोग कम रखेंगे ये ज्यादा रखेंगे।
इलायची छोटी इलायची 12 ग्राम ले लें, 12 ग्राम छोटी इलायची और सौंफ ये आपने 25 ग्राम लेनी है, दो चीजें हो गई छोटी इलायची 12 ग्राम सौंफ जो है 25 ग्राम और फिर देसी पुदीना, ये जो घर में हम पुदीना इस्तेमाल करते हैं ये खुश्क पुदीना ये भी 25 ग्राम ले लें, 3 चीजें हो गई। और चौथी चीज आखिरी चीज इसके अंदर है मीठा सोडा जो घर में इस्तेमाल होता है खानों में, तो ये आपने लेना है 12 ग्राम छोटी इलायची और मीठा सोडा 12-12 ग्राम और देसी पुदीना और सौंफ ये 25-25 ग्राम, इन सबको पीस कर मिक्स करके रख लीजिए। खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ पेट का प्रॉब्लम होता है तो उल्टी है उल्टी मतलीक है वगैरह होती है तो उसके हवाले से भी ये मुफीद है, तो आधी आधी चम्मच जो है खाने के बाद इसको इस्तेमाल कर ली जाए तो इंशाल्लाह फायदा हासिल।
हमने कोशिश की है अभी इस सेगमेंट में कि जो वक्त आने वाला है उसमें आप अच्छी सेहतमंद उन घड़ियों को गुजार सकें और जो कुछ मतलब नुकसान से खुद को बचा सकें, खुद को भी और घर वालों को भी, कोशिश की है। अमल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो फायदा होगा, वरना सीधी बात है पेट भी आपका, गोश्त भी आपका, सब कुछ आपका। आखिर में खलील भाई ने इलाज ही दे दिए आपको, लेकिन इस तरफ वैसे इनका एक फायदा ये है, ये जिस तरह इलाज देते हैं को खरीदता वरीदता क्या होगा बेचारा, कौन इतना। अब ये बोलते ना कि जाकर ये ले लो टेबलेट, तो कौन जाकर ले लेगी, रख लेगी। और यही करते होंगे डिब्बिया बोतलें आती हैं वो हाजिर
चूरन,
ये रख लेते होंगे चूरन वूरन, तो बेचारा इसका कौन 25 ग्राम ने 10 ग्राम ने 20 ग्राम इसको मिक्स करेगा।
चूरन के नाम भी बताओ ना आपको कभी, तो आप मतलब हैरान हो जाए नाम सुन सुन के।
क्यों सुनो मैं चूरन आता ही नहीं है, पता ही नहीं है जी। अब आप चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ।
मेरा निगरान शूरा की बारगाह में सवाल ये है कि कुछ अजीजों का वैसे भी हैं जो नाराज हैं, तो अगर उनके यहाँ कुछ तोहफा तहफा भेजा भी जाता है तो वो कबूल नहीं करते हैं। मिसाल का सभी ईद आ रही है, तो इस सिलसिले में जब ईद का गोश्त उनके यहाँ भेजा जाता है वक्तों का वो वापस कर दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, उनके यहाँ गोश्त भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, रहनुमाई फरमा दें अल्लाह आपकी मदरास फरमा।
आपको भेजना बंद नहीं करना चाहिए और उनको वापस भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो मिल सके तो वो वापस कर देते तो हम इनको मनाने की कोशिश करें, उनको राजी करें। हो सकता है ज्यादा नाराज हो और उनको शायद ये भी हो गया पूरा साल उनको खुश करने का इनको टाइम नहीं मिला और अभी खाली गोश्त भेज दिया, समझे हम खुश हो जाएंगे, हम क्या गोश्त के भूखे हैं। ये बेचारे फिर इस तरह इनको तक वो होता होगा, तो पूरा साल है हमारे को राजी करने के लिए मनाने के लिए, इसकी कोशिश करें। और अगर फॉर एग्जाम्पल कि वो भेज देते वापस तो भी आप नाराज ना हो, आप ये समझिए बहुत ज्यादा नाराज है या इसको और मनाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपना दिल छोटा ना करें। और उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि जब अटेम्प्ट किया है तो अल्लाह की रजा के लिए आप तोहफा वापस ना करें, कबूल कर लें और अल्लाह की रजा के लिए माफी कर दें, नाराजगी भी दूर करें।
सुभान अल्लाह। मरहबा, कॉल
मोहम्मद नवाज अतारी रहीम यार खान से। निगराने शुरा का सिलसिला मसायल उनका हल प्रोग्राम की क्या बात है, ये प्रोग्राम देखकर हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा होता है। अल्लाह पाक हाई साहब को, सारी टीम को, मदनी चैनल को नजरबाज से बचाए। हाई साहब की बारगाह में अर्ज है, जो लोग अपने लिए घर के लिए बकरा लेते हैं और अल्लाह की राह में देना है गरीबों को, बड़े जानवर में हिस्सा डाल के तकसीम कर देते हैं, ऐसा पूरा बकरा घर में रखना और गरीबों को बड़ा जानवर तकसीम करना कैसा, रहनुमाई फरमा दीजिए। जो कसाब को नमाज का कहा जाता है या लोग खाले अंधारों के लिए इकट्ठी करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, अगर नेकी की दावत दी जाए तो वो कहते हैं हमारे जिस्म को खून लग गया है और खून की मुश्क खत्म नहीं होता, हम मस्जिद में कैसे जा सकते हैं, इनके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। मेरी और मेरे घर वालों की ईमान की हिफाजत की दुआ फरमा दीजिए।
अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे। जो बड़ा जानवर इन्होंने गुरबा में तकसीम करने के लिए वगैरह के लिए दिया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर घर के घर वालों की कुर्बानी करनी है, सबकी कुर्बानी का एहतमाम होना चाहिए। एक बकरे से अगर उसको लगता है कि घर में हम 5 लोग हैं, 5 पे कुर्बानी है, और जो बड़ा जानवर दे दिया, वो बड़ा जानवर अपने इसमें अपने कोई हिस्सा नहीं डाला, अपनी कुर्बानी उसमें नहीं है, तो डेफिनेटली वो एक पूरे के पूरा जानवर आपने एक गरीबों में तकसीम करने के लिए दे दिया जिसमें आपने कोई हिस्सा अपना डाला नहीं है। तो अब आपको अपनी कुर्बानी तो करनी है, तो घर में अगर एक बकरा रख लिया और उसमें एक ही की कुर्बानी हो रही है, बकिया की नहीं हो रही, तो उनको अपनी कुर्बानी करनी चाहिए। अलबत्त अगर को पूरे के पूरा बड़ा जानवर गरीबों में और ज़रूरतमंदों में तकसीम के लिए दे देता है कि ये आप मेरी तरफ से काट कर उसका गोश्त तकसीम कर दें, तो ठीक है, उसको एक इंशाअल्लाह ताला इसका सवाब मिलेगा। लेकिन जो कुर्बानी वाजिब है वो अपना हिस्सा कुर्बानी का होना ये लाजिम है, ये याद रखिएगा। और नमाज के लिए जाए इतमाम करना है, चाहे वो गोश्त काटने वाला हो या कटवाने वाला हो या खाले जमा करने या खाल देने वाला हो, सबको अपने नमाज का एहतमाम करना है। बल्कि इस्लामी भाइयों को तो चाहिए कि अपने साथ एक अलग से जोड़ा रखा करें
जी।
और हम तो यही हमारे लिए शुरू से दावत इस्लामी में यही हमारी तरबियत है, صاف جوڑا رکھا کریں پلاسٹک بیگ تھیلی کے اندر، اور جب نمازوں کا وقت آئے تو اچھی طرح خون وغیرہ صاف کر کے کپڑے تبدیل کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، راہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، عطر کی شیشی وغیرہ بھی جیب میں رکھیں تاکہ خوشبو سے مہکتے ہوئے اور سر پر امامہ ہو اور ایک اچھے انداز سے مسجد میں داخل ہو نماز کے لیے. اس کے بعد دوبارہ آپ کپڑے چینج کر لیں، اور چینج کرنے کے بعد پھر آپ خالی جمع کر لیں. تو کسی کی بھی نماز تو نماز جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. جی،
یہاں ان کا ایک پوائنٹ تھا وہ یہ بھی تھا کہ تقسیم کرنے کے لیے بڑا گوشت کر دیا اور خود گھر پر جو ہے وہ چھوٹا گوشت رکھ لیا. یعنی ان کے سوال کا ایک جز یہ بھی تھا کہ چھوٹا گوشت تقسیم نہیں کر رہے، بڑا گوشت تقسیم کر رہے ہیں، چھوٹا گوشت اپنے رکھ لیں، رکھ رہے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
اس میں کیا پرابلم ہے؟
کوئی حرج نہیں. ٹھیک جی.
میں ہم عامر ہوں ڈاکٹر ماجد، اور میں شہر مشید کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگرانی سراغ، میرا آپ کے بارے میں سوال آج ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا قربانی کے جانور کے سامنے ہی چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کو تو دیکھ کے قربانی کا جانور خوف زدہ ہو جائے گا. اور پیارے نگرانی سراغ، بعض لوگ ایسے ہیں نا قربانی جب ہو رہی ہوتی جانور کی، جب ہی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں قربانی کے جانور کے پاس، دیکھنے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، لیکن نا ان کے پاس پہلے سے ہی بہت سارا سارا گوشت ہوتا ہے. اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو نا باقاعدہ بہت سارا گوشت ہوتا ہے، اور ان کے باتوں بات تو ان کے سر پہ بھی گوشت رکھا ہوتا ہے. تو پیارے نگرانی چورا، ایسے لوگوں کو قربانی کے جانور کا گوشت دینا چاہیے؟
پہلی بات تو یہ بیٹا کہ چوری جو ہے وہ قربانی کے جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی چاہیے، یہ تو ہے، پیچھے سے کریں. دوسرا، یہ جو گوشت لینے کے لیے جو نکلتے ہیں نا باہر، میں 100% تو نہیں کہتا لیکن ان میں شاید ایک بڑی تعداد گوشت جمع کر کے پتہ نہیں اس کا کیا کرتی ہوگی، اور ان کی وجہ سے کئی ایسے لوگ جو مستحق ہوتے ہوں گے. ایک سفید پوش آدمی کیسے سڑک پر آئے گا اور جگہ جگہ جانور کے پاس کھڑا ہوگا گوشت مانگتا رہے گا؟ تو ان میں ہو سکتا ہے کہ پروفیشنل ٹیمیں ہوتی ہوں جو گوشت کلیکٹ کرتی ہوں. جیسے ہمارے یہاں پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا جو بارشیں ہوئی تھی اور جو راشن تقسیم ہوتے ہیں تو لوگ باقاعدہ ٹیمیں بنی تھی اور وہ راشن جمع کرتے تھے، جمع کر کے بیچتے تھے. اب اس میں کیا پتہ بیچنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے نکل پڑے ہوں. عام آدمی، سفید پوش آدمی، ایک ایسا آدمی کیسے نکلے گا؟ میں 100% نہیں کہتا، لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یار ان کو دینے کے بجائے ان کو ڈھونڈے جو نہ نکلے ہوں.
مرحبا،
یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے.
بہت اچھی بات. جی،
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے نفسیاتی مسئلہ ہے، ڈپریشن ہے، او سی ڈی ہے، بائیو پولر ہے. میں 20 سال سے دوائیاں استعمال کر رہا ہوں مگر میں ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. میں ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج بھی کروا رہا ہوں. مجھے مہربانی کر کے میری مدد کیجئے، میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے پاؤں میں بے چینی ہے، میں کوئی کام بھی نہیں کر پا رہا، میں بالکل چپ چاپ ہو گیا ہوں، اداس ہو گیا ہوں.
اللہ کریم آپ کی مشکل حل فرمائے،
آمین.
آپ کو تندرستی عطا فرمائے، خوشیوں بھری، راحتوں بھری، سنتوں بھری، صحت بھری. اللہ تعالیٰ آپ کو طویل زندگی دے، آپ کے گھر بار کو اللہ سکھ عطا کرے. یہ انشاءاللہ علاج آپ کو بتاتے ہیں. میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ باوضو رہنے کے عادی نہیں ہیں اور نماز کی پابندی اگر خدا نخواستہ نہیں ہے، تو ایک تو اس کا اہتمام کریں بالکل. اور میری درخواست ہے آپ سے، آپ اشراق چاش کی نماز پڑھیں. اشراق چاش کی نماز پڑھیں، اللہ نے چاہا تو آپ کو اشراق چاش کی برکتوں سے بہت حصہ ملے گا.
سبحان اللہ،
یہ بڑی برکتوں والی نماز ہے اشراق و چاش. یعنی فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد کم از کم 2 رکعت اشتراک اور 2 رکعت چاشت کی نیت سے آپ پڑھ لیں. اگر تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 1 بار سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں گے تب بھی کفایت ہے. مدینہ مدینہ کوئی پرابلم نہیں ہے، درست پڑھیں، نمازیں سیکھ لیں. سب بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ نماز لوگ پڑھتے ہیں کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا. ایسا نہیں ہو سکتا، نماز فرق نہیں لائے گی تو پھر نماز فرق لاتی ہے، بہت فرق لاتی ہے، ہماری نماز درست ہونی چاہیے۔ اپنی نمازوں کی، قرآت کی، طہارت کی درستی، یہ میں آپ سمیت سب کو کہہ رہا ہوں، نماز کے ساتھ تو خیر ساری درستی ہو جاتی ہے، قرآت فرض ہے، طہارت شرط ہے، تو یہ سب چیزیں پوری ہو جاتی ہے اگر نماز درست ہو جاتی ہے تو۔ لیکن یہ الگ سے بھی میں صحیح اس کی اہمیت کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں۔ تو قرآت، نماز، اسی طرح اپنی کیا کہتے ہیں طہارت، ان تمام معاملات کو درست کر کے پراپرلی نماز پڑھیں، اور اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، لوگوں میں جا کر پڑھیں۔ یہ میں آپ کو جو حل عرض کر رہا ہوں، آپ سمیت دنیا بھر کے اس طرح کے اور اس سے ملتے جلتے کئی لوگوں کو میں علاج عرض کر رہا ہوں، اس میں انشاءاللہ آپ کا لوگوں سے انٹریکشن بڑھے گا، یہ جب چیزیں آئیں گی اور پھر کچھ مصروفیت پیدا کریں اس طرح کی، کوئی ٹارگیٹس بنا لیں اچھے، تو اللہ کی رحمت سے آپ کو وہ فرق پڑے گا کہ شاید آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، یا سلاموں کا ورد جاری رکھیں، یا سلاموں، یا سلاموں، یا سلاموں، کچھ کچھ دیر کے بعد درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد، یا سلاموں، یا سلاموں، یا سلاموں، آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں میرے رب کی رحمت شامل ڈال رہی تو آپ کو فرق پڑے گا۔ اور جب فرض نماز پڑھ لیں، تمام فرض نماز کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، یہ دل بالکل یہاں نہیں ہوتا، دل پر ہاتھ رکھ کر 11 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، انشاءاللہ سینے کی، دل کی گھبراہٹ، پریشانی، درد، اللہ نے چاہ تو ان سب سے نجات مل جائے گی۔ یہ چند چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور یہ ملتے جلتے جتنے بھی امراض جو بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کر کے دیکھیں، میرے رب کی رحمت شامل حل رہی تو آپ کو بہت ہی اچھا، خوشگوار فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ، آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ دوائی
زیرک بھی ہیں
جی، ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں
آپ؟ اصل میں موڈ ڈسآرڈرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ تھوڑے سے ایک جیسے ملتے جلتے ہوتے ہیں،
نفسیاتی پرابلم ہے، نفسیاتی پرابلم ہے، 20 سال سے علاج کرا رہے ہیں اور بیچاروں کو فرق نہیں پڑ رہا۔
تو اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ بعض ظاہر ہے کہ کچھ دوائیوں کے ساتھ علاج ہوتا ہے، لیکن پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہماری بچپن سے لے کر کچھ ایسے مسائل چلے آ رہے ہوتے ہیں نا، کہ جو ہمارے ذہن میں ہو چکے ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سی بات پر جو ہے وہ ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا منفی نیگیٹو سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بعض دفعہ تھراپی کی حاجت ہوتی ہے، ٹاکنگ تھراپیز کی، اس کی مختلف صورتیں ہیں، مرض کے حساب سے اس کی مختلف جو ہے وہ ٹائپس ہوتی ہیں۔ تو میرا مشورہ پھر یوں ہوگا کہ اگر اتنے عرصے سے یہ دوائی ٹرائی کر رہے ہیں پھر بھی جو ہے وہ بہتری نہیں آ رہی، تو اس میں پھر ٹاکنگ تھراپیز کی طرف جو ہے وہ کسی اچھے ماہر نفسیات سے یہ رجوع کریں، اور بعض دفعہ اس سے بھی بہتری آتی ہے۔ اور باقی جو نگران شورا نے الحمدللہ مدنی پھول پیش کیے، مدینہ مدینہ،
آگے چلتے ہیں۔ کال،
میں نے نا یہ پوچھنا تھا کہ مجھے نا میدے میں جو کچھ چیز کھاتا ہوں نا، تجاویز، گیس، قبض وغیرہ رہتا ہو جاتا ہے ہر چیز کھانے کے بعد، تو اس کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا عمران بھائی سے۔
اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں
اس میں؟ ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خوراک کا تعین کریں کہ خوراک زیادہ مرچوں والی استعمال تو نہیں کرتے ہیں، اگر وہ مرچوں والی استعمال کرتے ہیں تو اس کو کم سے کم استعمال کریں، بے وقت کا کھانا جو ہے اس کو ترک کریں، اور اگر کوئی ایسی چیز تمباکو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا اسموکنگ یا کوئی پان، گٹکا وغیرہ اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ بہت زیادہ اسٹریس کا ماحول اگر ہے ان کا گھر کے اندر یا آفس کے اندر یا جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں اس سے بھی کرنا، یہ ساری چیزیں ایسیڈیٹی کو ایگریویٹ کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں، تو آپ کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوگا تب آپ کو بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میدے میں اس کا ایک نارمل روٹین سے تیزابیت ہو رہی ہے کہ کوئی کھانے پینے کی وجہ سے ہو رہی ہے تو وہ ادویات وغیرہ سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہو رہی ہے तो डॉक्टरी मशवरे से एक टेस्ट होता है वो करवाया जा सकता है, देखा जाए कि जरासीम वगैरह तो नहीं है मैदे के अंदर जो वो एसिडिटी पैदा कर रहे हैं। अगर वो चीज़ है तो उसका भी एक बाकायदा ट्रीटमेंट होता है जो कि तकरीबन 15 दिन का कोर्स होता है, वो अगर डॉक्टर मशवरे से कोर्स करेंगे तो होपफुली वो भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो मरीज की अपनी विल पावर पर डिपेंड करता है, वो किस हद तक जाके एहतियात कर सकता है खाने पीने में, जितना ज्यादा वो एहतियात करेगा उतना ज्यादा इससे बच के रहेगा। तीसरे जो है पानी की मिकदार थोड़ी सी अपनी बराबर रखे कि कम अज कम जो 8 से 10 गिलास नॉर्मल अंदाज में अगर ये काम करते हैं तो वो यूज करे। अगर कोई ऐसी एनवायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे मेहनत मशक्कत का ज्यादा काम है, पसीना ज्यादा बहता है, तो वहां पे पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। तीसरी चीज ये कोशिश करें कि चहलकदमी की आदत डालें। अगर ये फजर की नमाज के बाद चहलकदमी कर लें, डबल 12 मिनट चहलकदमी कर लें, या सिर्फ 12 मिनट चहलकदमी कर लें, या ईशा की नमाज के बाद कर लें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है रात को चहलकदमी के अंदर की ये फौरन खाना खाने के फौरन बाद चहलकदमी ना करें, यानी खाना खाने उसका कम से कम 1.5 घंटे का 2 घंटे का रेस्ट देके उसके बाद चहलकदमी करेंगे तो ज्यादा उनके लिए बेनिफिट रहेगा रात के टाइम। लेकिन सुबह के टाइम नाश्ते से पहले चहलकदमी इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। तो ये गैस के मामलात हैं, तेजाबियत के मामलात हैं, उससे काफी हद तक इनको फायदा हो सकता है। डिपेंड करता है उनके अपनी विल पावर के ऊपर कि वो कितना उसके ऊपर अमल करते हैं।
जी ऐसा मैं एक सवाल कर लूं से, आपको हज की कौन सी चीज ज्यादा याद आती है? जैसे बनने का होता ना एक चीज वबस्ता हो जाती दिल में, जैसे एक नक्श कर जाता है, जैसे काबतुल्लाह मुशरफा के गिलाफ को पकड़ के दुआ करना, ये बड़ा शौक जब याद आता है तो बड़ा शौक बनता है। और अपना तो यही है ये हज के दिनों में जो जैसे अमाल होते हैं, मीना है, अरफात है, मुजलिफा है, तो क्या
मतलब अरफात
सुभान
और मुजलिफा, मैदान अरफात में हुकूकुल्लाह और मुजदलिफा में हुकूकुल इबाद की माफी का वादा है
सुभान,
और अरफात का वकूफ ये मतलब दो रुकन आजम है ये भी और एक तवाफ ज़ियारा। तो अरफात का मैदान के बस मैं तो जब 17 साल के बाद जब मैं पहुंचा था सुन्नत के साथ तो मुझे याद है बस से उतरने के बाद मैंने देखा, शायद याद पड़ता है कि 12:24 या 12:25 और कुछ सेकेंड पर वकूफ अरफात का वक्त शुरू हो रहा था।
अल्लाह
तो बस से उतर कर अरफात में दाखिल हो चुके थे
सुभान अल्लाह।
और जैसे अरफात में दाखिल हुए थे मेरे सुन्नत भी चल रहे थे, मैं पीछे साथ ही साथ पीछे ही चल रहा था और मैं बार बार घड़ी देख रहा था अल्लाह मैं मर ना जाऊं, बस मेरा वकूफ शुरू हो जाए। उस टाइम ऐसा ही फील हो रहा था जैसे मेरे रूप में मर ना जाऊं, मेरा वकूफ शुरू हो जाए कि मैं मतलब ये वकूफ अरफात का मेरा वो जो था ना कि हालत एहराम में हज की नीयत से वो हाजी हो जाता है
जी,
उसका वकूफ दुरुस्त हो जाता है। तो वो एक था जैसे ही वक्त शुरू हुआ ना मिले सुन के साथ ही वो मुबारक वकूफ अरफा शुरू हो चुका, वक्त शुरू हो चुका। तो वो एक बड़ा मतलब कि वक्त होता है यार अरफात। तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दो अल्लाह के नबी अरफात के मैदान में तशरीफ फरमा होते हैं
सुभान अल्लाह,
वो बोले थे दुआ फिर तो एक है फिर वो मुजदलिफा, और वो मुजदलिफा में फिर वो घर ही थे, पापा भी सोए हुए थे, मैं भी लेटा हुआ था। ऐसा लगता जैसे कि किसी कभी एक तस्वीर कभी वो मुझे लगता था मैंने कभी देखा है कि पापा लेटे हुए होंगे मैं भी लेटा हुआ होगा, हम दोनों बातें कर रहे होंगे
अल्लाह अल्लाह,
वही चीज दोहरा वो जैसा नहीं दिमाग में आता है कि यार ये यही मंजर ये पहले कुछ गुजर चुका है। सब कॉन्शियस के अंदर एक चीज होती है तो वो एक चीज थी, वरना तो उसकी हर हर घड़ी हर हर लम्हा काबे की ज्यारत और काबे की ज्यारत के साथ साथ जमजम शरीफ को पीना देखते हुए फिर तवाफ, तवाफ में दुआएं इल्तिजाएं मुनाजात।
आप वैसे क्या पढ़ते हुए आप तवाफ करते हैं?
कई चीजें दुआएं भी होती हैं, मुनाजात भी होते हैं, बिलखुसूस जब ये मुस्तजाब के सामने सब गुजरते हैं
जी।
उस पर एक दुआ जो किताब रब्बना आतिना फिद दुनिया, क्योंकि उस जगह पर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार के मुस्तजाब की दीवार पर 70,000 फरिश्ते हर वक्त दुआ पर आमीन कहने के लिए मौजूद होते हैं। दीवार को कहते हैं मुस्तजाब है, जो हजर अस्वद से पहले की जो दीवार है।
जी हाँ जी, रुकने यमानी और हजर अस्वद की जो दरमियान,
ये है आपकी अपनी सूरत आल कैफियत, कभी रहमत का गलबा तो कभी खौफ तो कभी डर तो कभी क्या कभी क्या, कभी अपना वजूद पर नजर, अल्लाह की रहमत पर नजर, वो और सुना फिर जो हैबत से रुके मुजरिम,
जो हैबत से रुके मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर चले आओ चले आओ आओ चले आओ चले
उस रहमान की कसम, रब्बे काबा की कसम, उसके सिवा कोई रहमान भी नहीं है।
अल्लाहु अकबर।
चले आओ चले आओ
ये घर रहमान का घर है,
ना हम
आने के लायक थे नमो बिल दिखाने के, न हम आने के लायक थे नमो का बिल दिखाने के, मगर उनका करम जरा है इसकी भी।
के दौरान कभी कभी ये अब तवाफ करते रहे और तवाफ करते करते काबे की तरफ निगाह तो उठती है, लोग जा रहे होते, रश लगा होता है, धक्के पड़ रहे होते हैं, कभी कभी ये तस्वीर आता है कि जैसे कि तवाफ करते करते हम जन्नत की तरफ बढ़ रहे हैं।
अल्लाह
जन्नत की तरफ ऐसा मतलब हुजूम होगा कि कंधे से कंधा छिल रहा होगा, कंधे से कंधा बिल्कुल भीड़ होगी जन्नत की तरफ जाने में। तो ये होता है उस टक पर। वो शेर जो है ना बड़ा ईमान अफरोज और बड़ा पुरजोक शेर है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का।
सफ़े मातम उठे खाली हो जिंदा टूटे जंजीरे गुनाहगारो चलो
तवाफ़े खाना है काबा का इतना पुरलुत्फ होता है, यूं ऐसा फील होता था कि क्या मैं कभी भी काबा नहीं देख सकूंगा।
अल्लाह
17 साल हो गए थे और जब तो याद है सलमान भाई जब मैंने तवाफ शुरू किया था ना तो सिर्फ ये सोच सोच कर रोना आता था या अल्लाह तूने कर्म कर दिया,
अल्लाह
मुझे बुला लिया और मैं वाकई तवाफ कर रहा हूँ। इतना वो लम्हा था कि मैं वाकई तवाफ कर रहा हूँ और मैं अमीले सुन्नत के साथ काबे की ज़ियारत कर रहा हूँ। तो ये बस रहमत की और करम की बातें हैं, अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन अब तो खैर 2 साल हो गए, लाखों लाख लाखों लाख लाखों लाख आशिकाने रसूल इस सादा से महरूम है। अल्लाह करम करे, कोरोना दीगर बलाएं आफतें बस दूर हो जाएं और जहां जिंदगी मामूल पर आ जाए वहीं पर ये रास्ते भी मामूल पर आ जाए।
आमीन।
और बस ये साल तो चलो गुजर गया, मीना अरफात मुज़दलिफा कुर्बानियां ये सारा जो भी एक प्रोसीजर है डेफिनेटली वो एक, 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 एक जो अरकान है और जो एक वहां का मनासिक है तरीका है वो सब डेफिनेटली वो रही गए। अब कईयों का तो नसीब वाले पहुंचे, ऐसा है ही नहीं ये कोई पहुंचा नहीं है, नसीब वाले पहुंचे और पहुंच रहे अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात गुजार रहे होंगे। कॉल्स लेते हैं।
निगरानी शुरा आपसे अर्ज है, मेरे को चक्कर आते हैं, मेरे आंखों में अंधेरा सा छा जाता है, मेरे लिए दुआ फरमाए और इसका इलाज बता रहे।
अल्लाह ताला आपको बेटा शिफा अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपकी जुमला बीमारियां दूर करके राहतों भरी रहमतों भरी खुशियों भरी तबील जिंदगी अता फरमाए। जी कुछ फरमाएंगे आप?
इनकी जो एज है उससे मुझे बजाय लग रहा है कि इनका एक तो वजन कम है, एक खून की कमी भी है, तो ये अपने डॉक्टर से रब्ता करके अपना खून चेक करवा लें कि खून की मिकदार कम है और वजन कम है, तो उसके हवाले से अपने डाइट का एहतियात कर लें, क्योंकि शिकायत अमूमन इसी तरह की आती है चक्कर आ रहे होते हैं, खून की कमी और वजन की कमी। बाकी खलील भाई आप दे दें।
तो सब्जी और फ्रूट पर आप तवज्जो दें, सब्जियां और फ्रूट इंशाल्लाह आप कसरत से इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो ये शिकायत।
अगर खजूर चलती हो
जी जी
तो खजूर और दूध बेहतरीन मशरूब और गिजा अगर हम कहें
बेहतरीन,
अगर चलती है खजूर और दूध दोनों, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट हर एक या डेयरी आइटम हर एक का मैदा कबूल करे ये जरूरी नहीं होता, अगर डॉक्टर का मशवरा कर लें अगर आपको खजूर और दूध माफिक आते हो, खजूर भी बरकतों वाला एक फल ही फल के लें इसको और दूध तो दूध है, अगर ये आपको माफिक आती हो ना तो बेटा खजूर और दूध का इस्तेमाल रखें आप 3, 5, 7 जो भी खजूर है, इसकी तासीर गर्म होती है लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बहुत एनर्जेटिक होती है खजूर, बहुत एनर्जेटिक खजूर और दूध। تو ہمارے عموماً دودھ بچے بھی نہیں پیتے بڑے بھی نہیں پیتے, دودھ پینا چاہیے.
جو انداز آپ نے بتایا اس طرح اگر یہ پیئیں گے تو اس کا ذائقہ اتنا اچھا ہو جائے گا کہ جو نہیں بھی پیتے انشاءاللہ.
ساتھ اگر انجیر کا استعمال بھی ہو جائے نا, اگر ہے اچھی بات کی ڈاکٹر سلمان نے کہ اگر جو انجیر کے دانے آپ نے کے کھانے کے تو روز کے 10-12-15-20 روپے کا اپنی صحت پر انویسٹمنٹ ہے, میڈیسن سے تو اچھا ہے, میڈیسن ہی آ جاتی ہے 25-50 روپے کی. تو
اسی طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے 2 کھجور لے لیں اور 2 انجیر اس میں شامل کر لیں,
اور یہ ایک غذا بھی بڑی لذیذ مرغوب غذا. میرے تو مجھے الحمدللہ رب العالمین اللہ کا کروڑوں کرم ہے, اللہ زوال نعمت سے بچائے, الحمدللہ ماشاء اللہ. میں تو کھجور انجیر دودھ یہ سب شکر ہے اللہ کا, یہ اچھی غذائیں اور چلتی ہیں اور پسند بھی ہیں.
مرحبا.
الحمدللہ آپ بھی اس کو رکھیں, کھجور مہنگی نہیں ملتی, دودھ ریگولر ہمارے گھروں میں آتا ہی ہے, انجیر بھی ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی مہنگا نہیں ہے کہ ایک عام آدمی شاید اس کو افورڈ نہ کر سکے, ایسا بھی نہیں ہے. یعنی کوئی چلگوزہ نہیں ہے, چلگوزہ بہت مہنگا ہوتا ہے, اور حالانکہ چلگوزہ اتنا سا ہوتا ہے لیکن بہت مہنگا ہے, تو اس کی بھی کبھی کبھی زیارت ہوتی ہے. اور اتنا مہنگا تو کوئی بھی کوسکے کا سامنے آئے گا, لیکن انجیر لے سکتا ہے بندہ. اور آج کل آلوچے آتے ہیں, یہ خوبانی آتی ہے, یہ بھی کافی ماشاء اللہ بلڈ بناتی ہے چیزیں نا.
آم بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے دودھ کے ساتھ.
جی کال دیں.
میں کم سے کم کوئی 8-9 سال سے اس چیز میں مبتلا ہوں کہ مجھے کرنٹ سے میرا آتا ہے, میرا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, غصہ آتا ہے, چڑچڑا پن آ جاتا ہے میرے اندر, لیکن مجھے ہوش ہوتی ہے لیکن غصہ چڑچڑا پن ایسا ہو جاتا ہے.
اللہ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, اور ان تمام تر بیماریوں پریشانیوں سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے.
آمین.
اس سے زندگی بھی بڑی اجڑ سی جاتی ہے, ساتھ رہنے والے بھی بڑے پریشان سے بعض اوقات رہتے ہیں, تو اللہ کرم فرمائے. آپ کچھ علاج بتائیں, ان کو کوئی روحانی علاج بھی دیتے پڑھنے کے لیے.
آپ ایسا کیجئے, اللہ کریم آپ پر رحمت کی نظر فرمائے. لا حول شریف, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, یہ 60 times اس کو روزانہ پڑھ لیں اور پانی پر پھونک مار کر دم کر کے اس کو پی لیا کریں, تو اللہ نے چاہا ان شاء اللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اس کو جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ جو ہے چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا سلام, اس کا ورد رکھیں تو اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ فائدہ ہوگا. باوضو بھی رہیں, اور خاص کر غصے کے لیے ایک ورد یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو, ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو, اول اور آخر 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور پانی پر دم کر کے اس کو پی لیا کریں. تو 40 دن یہ عمل کریں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل غصے کی عادت بھی انشاءاللہ جاتی رہے.
انشاءاللہ اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے. جی کون؟
غلام یاسین عطاری بلوچستان نالناڑی سے عرض کر رہا ہوں. حضور عرض یہ کرنی تھی کہ اگر داڑھی کے بال زیادہ جھڑتے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟
بلوچستان بھاگ ناڑی سے کال, یہ سبھی کے مضافات میں ایک علاقہ ہے ماشاء
اللہ, بلڈ کا ایشو بھی آ سکتا ہے. اللہ تندرستی دے, شفا دے, اور اللہ کرے کہ یہ پرابلم بھی آپ کا دور ہو جائے.
آمین.
اس میں بلڈ کا ایشو بھی ہوتا ہے کہ بلڈ کی وجہ سے بھی, بلڈ کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ داڑھی کے بال زیادہ.
اسکن پرابلم بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فنگس وغیرہ ہوتا ہے یا ڈینڈرف وغیرہ ہوتی ہے جو کہ اس کی جڑوں کو ویک کر دیتی ہے, تو اگر اسکن اسپیشلسٹ کو بھی دکھا کے مشورہ کر لیں تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ ایلوپیشیا کی طرف چلا جاتا ہے بندہ, وہ ایک مخصوص
تیل وغیرہ کا استعمال بھی,
اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے.
تیل کا کون ابا بنا ہو, تیل بنانے کا بولو گے اس کو,
بنا بنائے بتانا.
جب بنا ہوا پھر ٹھیک ہے.
اس میں بالوں کے حوالے سے جو تیل بہت زیادہ مفید سمجھے جاتے ہیں وہ ہے تل کا آئل, تلوں کا آئل یہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے, یہ آپ لے لیں 100 گرام, اور اس کے اندر کسٹر آئل وہ 50 گرامس آپ ملا لیں, 50 گرام کسٹر آئل اور 100 گرام تلوں کا آئل, تو یہ دونوں جو ہے بال اگانے کے حوالے سے, بالوں کی نشو نما کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہیں. دونوں کو مکس کر لیں اور پھر ان کو جو ہے آپ وقتاً فوقتاً,
کئیوں کے بال کمزور ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, آتے نہیں ہیں, یا ہلکے بال ہوتے ہیں, ان کو چاہتے ہیں کہ ہمارے بال گھنے بھی ہوں گرے بھی کم, تو کیا مرد کیا عورت ان سب کے لیے یہ مشورہ ہے.
सभी लोग इसको आम रूटीन में इसको इस्तेमाल में रखेंगे तो इंशाल्लाह बालों में मजबूती भी आएगी, और जो बाल वगैरह गिरते हैं तो उस हवाले से भी, और बाल उगाने के एतबार से इसके अंदर जो कस्टर ऑयल है इसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है, तो ये बहुत ज्यादा मुफीद समझा जाता है बाल उगाने के एतबार से भी। तो ये दोनों को मिक्स करके इसको लगाने की आदत बनाए, चाहे तो इसके अंदर कोई खुशबू का इस्तेमाल कर लें ताकि ये आपके लिए और फायदेमंद हो जाए, तो कहीं लगाएंगे तो आप इंशाल्लाह खुशबू भी महसूस होगी। तो दोनों को मिक्स कर लें, 100 ग्राम तिल का ऑयल 50 ग्राम ये, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल मुफीद रहेगा। बाकी अगर किसी के ऐसे हैं कि बाल उगते नहीं है, जैसे बाल उड़ गए तो वो अगर इस्तेमाल करना चाहे तो बना बनाया अंडे का ऑयल मिलता है, अंडे का तेल, तो वो अगर इसका मसाज करते रहे,
स्मेल होती होगी
जी जी उसमें स्मेल होती है, तो उसका एहतियात से
इस्तेमाल
वगैरह जी जी, तो उसका इस्तेमाल कर लें ऐसे मौके पे कि जब आप जैसे घर पर हो तो 3-4 घंटे वो लगा रहे, उसका मसाज अच्छी तरह से कर लिया जाए, तो ऐसे यानी कि गंजपन जो होता है उस हवाले से ये तेल बहुत ज्यादा मुफीद है
जी।
माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारे निगरान शुरा, आपका सिलसिला बहुत 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 ही प्यारा है। अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन आमीन आमीन।
बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हमारे बिगड़े हुए काम दे बना।